मात्र स्वाध्याय के बारे में ही आवश्यकता का यह प्रश्न उठता होगा तो अपनी रुचि कहाँ है इसका अंदाजा आ सकता है। यह प्रश्न हरेक को अपने आप से पूछना है, दूसरों की ओर इशारा करने की जरूरत नहीं है। बेटी, अपना मन मरकट की भांति चंचल है, इसे नित्य नया अवलंबन चाहिए। समाचार जानने के लिए हम समाचार पत्र पत्रिकाएं पढ़ते हैं, टीवी देखते हैं, क्योंकि हम अपनी ज्ञान पिपासा कम करना चाहते हैं। कथा कहानियां पढ़ते समय और टीवी सीरियल देखते हुए आगे क्या होगा इसके बारे में हम उत्सुकता से राह देखते हैं, अंदाजा लगाते हैं, इस पर आपस में चर्चा भी करते हैं। उस समय हमें पता है कि ये सारी बातें काल्पनिक है, लेखक की कल्पनाओं में से उभरी हुई ये कहानियां हैं और टीवी पर भूमिका अदा करने वाले जो कलाकार हैं, पात्र हैं, वे भी इन भूमिकाओं से भिन्न हैं। फिर भी प्रतिदिन 3-4 घंटे या अधिक समय उसकी ओर निगाहें थामे पात्रों के सुख दुखों से समरस होकर हम भी राजवेश करते हैं, सुखी दुखी होते हैं, सुखी मानते हैं, सच कहो तो दुखी ही होते हैं। शास्त्र की भाषा में इसे विकथा कहते हैं। प्रमाद का वह एक ध्येय है, बंध के कारणों में हमने प्रमाद को एक कारण देखा था। हमने देखा बंध के कारण जो है मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, तो ये प्रमाद जो है वो भी बंध का कारण। परंतु इसकी आवश्यकता क्या है, ऐसा सवाल आज तक किसी ने अपने आप से पूछा नहीं होगा। ये आवश्यकता के ऊपर की ये सारी बातें हैं। इन अनावश्यक बातों को करने से कर्म बंध का दंड हमें मिलता है, इसलिए इसे अनर्थ दंड कह सकते हैं। अस्तु, वो विषय दूसरा है। वो रत्नानंद शाकाचार में हमने देखा था अनर्थ दंड। अनर्थ दंड त्याग व्रत 5 गुण स्थानवर्ती जीवन को होता है, उससे इसे जबरदस्ती नहीं लेना पड़ता, उसको तो उसकी रुचि ही छूट जाती है, उससे इसे भाव ही नहीं होता कि मैं इतने घंटे बर्बाद करके उसको देखूं। ये सहज होता है और जो अज्ञानी होगा वो ऊपर से काम काम कर व्रत लेता है, नहीं मुझे अभी इसका त्याग करना है, मुझे ये नहीं करना, मुझे वो नहीं करना, मुझे ऐसे होते। और ज्ञानी को अंदर से ही अन्य चीजों की रुचि छूटती चली जाती है। करणाम योग पढ़कर भी हमें वितरागता की ही प्राप्ति करनी है। सामान्य कथन की अपेक्षा कोई भी बात विस्तार से समझाने पर तुरंत समझ में आती है। कहीं भी देखो आप, सामान्य कथन एक होता है और उसके डिटेल से अगर हम उसका कथन करें तो बात अधिक ध्यान में आ जाती है। शास्त्र में कहा है, सामान्य शास्त्र तो नूनम विशेषो बलवान भवे। यानी सामान्य शास्त्र से भी जो विशेष जो है, विशेष जहाँ अधिक उसकी विस्तार से समझाया है, वो बलवानी ने वो समझने के लिए अधिक कार्यकारी है। करणाम योग पढ़कर वितरागता प्राप्त करना भी एक कला है। ये सामान्य विशेष है, जो हम पंचाध्यायी द्रव्य के सामान्य विशेष हैं उसकी चर्चा नहीं है, ये सामान्य विशेष कथन की अपेक्षा है। सामान्य कथन और विशेष कथन, हाँ, जनरल और डिटेल, वो जो सामान्य है कि विशेष की दृष्टि छोड़ो और सामान्य की करो, वो वाला सामान्य विशेष नहीं है, क्योंकि सामान्य विशेष के अलग अलग अर्थ अलग अलग जगह होते हैं। करणाम योग का विशेष सूक्ष्म है, उसमें मन की एकाग्रता की आवश्यकता होती है। उसमें कुछ गणित तो ऐसे कठिन है कि बुद्धिवंतों को भी पसीना छूट जाए और उनके चक्कर में पड़ जाए, परंतु यदि इसे उत्साह के साथ समझने का प्रयास करेंगे तो उपयोग की सूक्ष्मता होती है, जिसे अपनी पकड़ में आता है। जैसे अन्य कोई चीजें करनी है तो हम कहीं पर देखते हैं करते रहते हैं, तो ये ऐसा विषय है कि उसी में पूरा मन एकाग्र किए बिना कुछ पकड़ नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। ठीक है ना, अभी कुछ कोयले उठाना है तो एक बाजू ऐसे कहीं देर देखते देखते करेंगे वो काम, और कहीं बिल्कुल छोटा कुछ तो कैसे करेंगे, उपयोग कितना सूक्ष्म करना पड़ेगा। और बाकी स्वेटर बुनना हो तो इधर उधर देखते देखते भी बुन सकते, तो इसमें सूक्ष्मता, उपयोग की सूक्ष्मता, ये हमें भी आदत होती है ना उसमें, क्योंकि पूरी दुनिया हम भूल जाते हैं। ऐसा नहीं कि हमें अभी इधर नहीं देखना है, मुझे वो नहीं देखना, ऐसा नहीं। जो हम समझ रहे विषय उसी में हम इतने एकाग्र हो जाते हैं कि पूरी दुनिया को भूल जाते हैं, उसको कहते हैं उपयोग की सूक्ष्मता। पक सम्यक है। सम्यक्तों के कारणों की अपेक्षा से जो भेद बताए हैं, आपने कहीं सुना होगा सम्यक्तों के भी भेद बताए अलग अलग नाम के? बीज सम्यक्त है, आज्ञा सम्यक्त है, ऐसे अलग अलग भेद होते हैं। आत्मानुशासन में उनमें से एक बीज सम्यक्त है। कर्णान योग के बीज गणितों को भी सम्यक्तों का कारण बताए। देखो किसी किसी को इन गणितों में इतना उपयोग कुछ हुआ और ये केवल ज्ञान की महानता आई और वहाँ के उपयोग सुधार अपने आत्मा को पता बीज गणित कहते ना। बीज गणित आपने नाम सुना होगा, अलजेब्रा को बीज गणित कहते, उसको बीज बीज यानी वो शीर्ष बोले बीजी बीज यानी वो अलजेब्रा जो मैथमेटिक्स जो है उसको बीज कहते हैं। बीज सम्यक्त है, कर्णान योग के बीज गणितों को भी सम्यक्त का कारण बताया है, अर्थात उपयोग की एकाग्रता में से हट कर स्वसन्मुख परिणामों के द्वारा सम्यक्त की प्राप्ति होती है। जब हम कर्णान योग पढ़ते हैं तो ख्याल आता है अरे सर्वज्ञ का ज्ञान कैसा होगा, ये शीतज्ञानियों ने भी इतना लिख के रखा है और वो भी समझते समझते हमें पसीना छूटता है, इतना भारी गणित है उनका। वो तो कहीं वहाँ तो कंप्यूटर खोले जाए ऐसे गणित है। तो ये सारा जो सर्वज्ञ ने बताया है तो सर्वज्ञ का ज्ञान कैसा होगा, तो सर्वज्ञ की महिमा हमारी बढ़ जाती है। गुणस्थान मार्गणा पर्याप्ति प्राण समिया उपयोग के वेद आदि संबंधित जो यथार्थ और विस्तृत विवेचन, ये यथार्थ है किसी मनगढ़ंत बातें नहीं है, एक्चुअल है विस्तृत विवेचन जैन आगम में पाया जाता है वैसा अन्यत्र कहीं भी नहीं है। अन्य मति भी कहता है कि मैं आत्मा हूँ, आत्मा शुद्ध है, अकर्ता है, अभोक्ता है, परंतु वे सर्वथा उसे वैसा ही मानते हैं। उसे सुनकर कोई सोचेगा कि अरे अपने शास्त्रों में भी तो ऐसा ही पढ़ा था, ये जो अन्य अन्य मतियों के जो है ना उसमें तो ऐसे होता है वो तो आत्मा शुद्ध है, ऐसा है, वैसा है, जैसा नहीं है, अकर्ता है, अभोक्ता है, अरे ये तो अपनी बात है, परंतु उसमें मानते उसको एक ही पक्ष पूरा सर्वथा मानते उसको। परंतु एक बार याद रखो कि जैन शास्त्रों का इस तरह का कथन निश्चय नहीं का कथन है और व्यवहार नहीं के कथन है। जीवों के शरीर इंद्रिय कर्म गुण स्थान आदि कितने पाए जाते हैं उसका वर्णन पाया जाता है। इन्हें इन सबका स्वीकार करते हुए फिर इनका लक्ष्य छोड़कर शुद्धात्मा का लक्ष्य किया जाता है। परंतु अन्यमति तो इसे मानती ही नहीं सकता, जो वैदिक जो मत है तो वो तो सर्वथा आत्मा ऐसा है, बाकी सब झूठ है, मिथ्या ही है, माया है, ऐसा कह रहे। अन्यमति इन बातों को जानता नहीं और ब्रह्म सत जगत मिथ्या कहकर परद्रव्य और पर्यायों का सर्वथा निषेध करता है। आजकल अनेक लोगों में एक धोखादायक भ्रांति पाई जाती है, टीवी पर या सार्वजनिक स्थानों में अन्य मतियों के प्रवचनों को सुनते हैं और कहते हैं उसमें से हम अच्छी बातें ग्रहण करेंगे। ये आम तौर पर बहुत उनकी मान्यता है, वे उसमें से अच्छा अच्छा ग्रहण करेंगे। उसे मात्र सुनने या जानने से अपना नुकसान होने वाला नहीं है, उनको भी डेंजर कहाँ है कि जिसे यथार्थ अयथार्थ की पहचान नहीं है, अभी जिसको शास्त्र का अभ्यास नहीं है, सिद्धांत प्रवेशी का जिसने नहीं पढ़ी है, तत्व तो क्या है वो तो कैसे उसको पहचाना, ये कहाँ किसकी कौन सी तत्व की भूल हो रही है, छोटे छोटे वाक्य होते लगता था अरे वहाँ मैं अच्छा बताया, अरे क्या अच्छा बताया, उसमें जो भूल है वो जो जब तक पकड़ नहीं सकते है तो उसको वो अच्छा ही लगता है। तो क्या कहते हैं कि मुझे यथार्थ यथार्थ की पहचान नहीं है, उसके अभिप्राय में उस व्यक्ति और उसके उद्देश्य के प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है और वह फंस सकता है, धोखे में आ सकता है। इसको क्या कहा था हमने रत्न शावकर जी ने, हाँ अन्याय करने, उसमें से अच्छे अच्छे दिखते कुछ वाक्य और उनके प्रति आदर भाव जो जागृत हो गया। कौन कौन से अनायतन स्वनायतन वो तो तीन मूर्ता हुए कुदेव कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और उनके सेवक भक्त इनके प्रति आदर बुद्धि होना। अरे वो कितना अच्छा है, वो अपने भगवान का कितना बेटा, ऐसे कुछ भी कही समय दृष्टि का ऐसा भाव भी नहीं होना उत्पन्न होगा। ऐसे किसी का वो द्वेष नहीं करेगा, किसी को ऐसे बोलेगा नहीं कि तो उसकी निंदा भी नहीं करेगा, ऐसा क्या मूर्ख है, ऐसे ऐसे समझने वाले को समझाएगा, परंतु उसके मन में उसके प्रति बिल्कुल किंचित मात्र भी आदर बुद्धि आदर भाव नहीं होता। अभिप्राय में तो बिल्कुल उसको वे सुनने जैसा भी नहीं मानते, भले सामने कुछ चल रहा हो देखेगा भी, परंतु अभी उसको पकड़ है ना कि ये कहाँ गलती कर रहा है ये भी उसको पता है। वो अपने आचार्य है, उन्होंने भी सभी मत के शास्त्रों को पढ़कर हमें बताया था, ये है इसमें तत्व है, इसके इसमें तत्व है, ऐसा है ये ऐसा है, इसलिए ये भूता है, इसलिए ये सक्षम। क्योंकि ये जो कंपेरेटिव स्टडी है उनकी बुद्धि तो बहुत थी, मोक्षमार्ग प्रकाशक में पांचवा जो अधिकार है उसमें सारे ही अनुमतियों के मत उन्हें वहां विस्तृत चर्चा की। दूसरे भी अपना एक त्यागवाद मंदिर नाम का एक ग्रंथ बहुत बड़ा है, तो उसमें भी सारे ही अन्य अन्य दर्शनों के मत, उनके तत्व, उनके क्या क्या, वो सारे डिटेल दिए और फिर वो कैसे झूठ है उसको भी सिद्ध किया। क्योंकि अभी अपना ही शास्त्र का पता नहीं है, दो चार अक्षर कभी पढ़े नहीं पढ़े और वहाँ पहले ही जाके अनुमति के पढ़ेगा तो हो गया उसका कल्याण। उद्देश्य प्रति आदर भाव उत्पन्न होता है, वो फंस सकता है, धोखे में आ सकता है, क्योंकि जिसे अपना खोटा माल बेचना हो वो केवल खोटा माल तो दिखाएगा नहीं, यानी जो अनुमति उद्देश्य करता है तो अकेले इच्छा बताएगा ना, उसमें कुछ कुछ अच्छी बातें डालेगा ना, नहीं सच्चे माल के साथ मिलावट करके ही बेचेगा। जिसे सच्चे झूठे की पहचान नहीं है उसे तो खोटा माल ही मिलता है, अर्थात उसके विपरीत अभिप्राय का ग्रहण होता है। उसने जो उसने बातें बताई उसमें जो विपरीतता है उसकी तो उसको तो वो ही पकड़ में आएगा। इसकी शास्त्र ने इसे अनायतन कहा है, कुदेव कुगुरु कुशास्त्र और इनके प्रत्येक के सेवक यानी भक्त, इन छह बातों के प्रति आदर भाव का होना, उनकी स्तुति करना छह अनायतन है, दोष है। इन दोषों के होते हुए संयुक्त की प्राप्ति नहीं हो सकती। स्वरूपानुभव और भेद ज्ञान में उपयोग सतत नहीं टिकता, विकल्प दशा में उपयोग वारंवार प्रयत्ता है, उस समय कर्णानुयोग के अभ्यास से वे सारी विशेष बातें जानने से आत्मगुण अधिक विकसित होता है, क्योंकि सत्य बातों का ज्ञान होना ज्ञान का विकास ही है। क्या कहते हैं, पहले उसने बताया था ना, अगर उसके रूप में सीखना उसकी क्या जरूरत है, तो वो तो सीख नहीं सकता अधिक काल, यदि कमजोर है नीचे वाले जो है चौथे पांचों गुण स्थान वाले, तो उसमें सतत उपयोग नहीं टिकता है। और विकल्पात्मक दशा में तो उपयोग तो बारंबार पलटता है, कहीं किसी वस्तु के और कहीं किसी वस्तु के उपयोग पलटता रहता है। और उस समय अगर ये हम अभ्यास करते हैं तो ये सारी सच बातें जानते हैं। पहले हमें इन बातों का ज्ञान नहीं था, पर्याप्ति क्या है, प्राण क्या है, क्या संज्ञा क्या है, प्रवृत्ति में क्या है, अभी मालूम हो गई तो ज्ञान का विकास हुआ कि ह्रास हो गया, विकास हुआ ना यहाँ, तो यह क्या कहते हैं कि ज्ञान का ये विकास ही है, क्योंकि हम सत्य बातें जान रहे हैं, इससे ये संबंधी अपना विश्वास दृढ़ होता है। जीव और कर्म का विस्तार से विवेचन जानने से स्वकोण और परकोण इनका स्पष्ट चित्र अपने नए चक्षु के सामने उभर आता है, भेद ज्ञान को पुष्टि मिलती है। भेद ज्ञान करना एक कहते हैं भेद ज्ञान करो इनको क्या है, तो भेद ज्ञान करने के लिए और अधिक अच्छा साधन मिथ्या दृष्टि शून्य दृष्टि शून्य दृष्टि वो रह गया सबका स्वरूप अपने ज्ञान में स्पष्ट रूप से झलकता है। जब हम ये करना है गुणस्थानों का अभ्यास करते हैं, ये जो करना है उसके द्वारा कौन कौन से गुणस्थान में जीवन के कैसे परिणाम होते हैं, तो ये सारे है, जब हम कहेंगे मुनि तो मुनि कहते हैं वहाँ कितने पता है, कितने का अभाव हो गया, वो कहते कहते कितना काल तक अपने स्वरूप में लीन होते, कितना काल में छोटे जाते होगा, क्या स्वरूप है, ये सारा ही अपने आसन के सामने स्पष्ट चित्र उभर आता है। उसके फलस्वरूप स्वयं में निर्णय करने की पात्रता तैयार होती है। तो हम लोग कहेंगे अरे ये ज्ञानी को कैसे पहचानना, वो मुझे लेकिन वो पैसा तो कक्षा मुझे लेकिन आप कैसे पहचानो, हमें तो बाहर के सब ये से दिखते हैं। तो ये अपने को भी निर्णय करने की पात्रता आ जाती है। अन्य लोगों की ओर देखकर देखा देखी कोई भी धार्मिक बातें क्रिया करने की अपनी वृत्ति नष्ट हो जाती है, योग्य अयोग्यता का निर्णय हो जाता है। दूसरों को दिखाने के लिए या समाज के भय के कारण कुछ करने की जरूरत नहीं होती। अरे वो बाकी सब लोग जा रहे हैं वहाँ पर छोड़े हैं तो उन्हें भी जाना चाहिए, उनके लोग क्या कहेंगे, ऐसा डर निकल जाता है। क्योंकि हम तो अभी आगम के ज्ञानी हैं, तो आगम के अनुसार हम वो जांच पहचान कर सकते हैं किसी भी चीज। अपने अभिप्राय की दृढ़ता बढ़ती जाती है, लौकिक तथा पारलौकिक भय नहीं रहता। उसको कुछ पता ही नहीं है, उसको तो हमेशा कह रहे क्या होगा मरण के पश्चात, मैं कहाँ जाऊंगा, कहाँ भटकूंगा, क्या क्या जैसे प्रश्न आता है वो किसी को बहुत भय लगता है कि मेरे मरण के बाद क्या होगा, अभी मैंने तो इतने पाप किए, अभी तो ये जन्मदर्शन नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा, तो ये सारा ही भय छूट जाएगा। देखो हमने अभी तक जो कुछ पढ़ा उसमें जीव का जीवन और मरण क्या है उसे देखा। जीव कायम रहकर मरण के पश्चात पहले तो एक से चार समूह में नए पुद्गल परमाणु ग्रहण करके नए शरीर की निर्मिति करता है, उसमें विशिष्ट कर्म नियुक्त होते हैं। आदि बातों का ज्ञान होने पर क्या मरण संबंधी डर कम हुआ ऐसा तुमको नहीं लगता। पहले तो मरण क्या है वही जान देने, अब क्या पता चला मरण हुआ परंतु शरीर का संयोग छूटा, जीव तो जीव रूप से कायम रहा, उसी तो अस्थि बनी रही, वो तो अनादि अनंत स्वयं सिद्ध तत्व है, कभी मरने वाला है ही नहीं। जिसको हम मरण कहते हैं वो इस शरीर का संबंध छूट कर अगले ही समय में नई आयु प्रारंभ होगी, और विग्रहपति के एक दो तीन या चार समय के पश्चात वहाँ नए परमाणु ग्रहण करके जीव नया शरीर बनाएगा, वहाँ उसकी आयु जितनी उसके बांधी है उतने भूगेगा, उसके अंत में और आगामी आयु बांधेगा। अरे वो मरण में क्या है, कुछ नहीं, अभी नींद में भी पांच छह घंटे होते हैं, वहाँ तो एक समय की बात है, उसका पता ही नहीं था इसलिए उसका डर लगता है। और हमें जो मरण के दुख होता है, हमारे घर के कोई व्यक्ति मर जाते हैं तो वहाँ भी अधिकतर तो अज्ञान के कारण ही है। हमारा कोई अमेरिका जाता है तो ऐसा नहीं हमको कुछ ऐसा नहीं लगता कि उसका नाश हुआ, अरे ना वो हुआ, वैसे यहाँ मरण हुआ तो मरण तो हमारा सबका होना है, कोई अमर पट्टा तो लेकर नहीं आया है, तो हमें पता है फिर भी हम क्या, अरे वो मरा, अरे बेचारा वो मरा, अरे वो बेचारा मरा, सारे बेचारे हैं हम। तो ये अपना भी एक समय निश्चित है ना, जो हमने पूरे होने निश्चित करके आए हैं, भोगी हमारी आयु निश्चित है और उसमें एक समय भी कटौती नहीं होने वाली है ना बढ़ोती नहीं, तो अपना समय निश्चित है। अभी अपना समय निश्चित है, इतनी आयु बीत चुकी है, अभी जो टाइम बचा है वो भी निश्चित है, उसमें कुछ बढ़ोती नहीं हो रहा है। तो भय उसका मरण का भय लेकर उसी में हम रात दिन सोचते रहेंगे तो अपना कल्याण कब करेंगे। तो अभी हमारा टाइम लिमिटेड है, तो अधिक से अधिक हमारा समय अपना स्वरूप जानने के लिए हम कार्यकारी कैसे बना लें उसको, तो समय तो बढ़ने वाला है नहीं है, और हमारा वेस्ट समय कहाँ जाता है, उन्हें बिना कारण कहाँ खर्च हो जाता है, तो उसको हम अगर बचाए तो मूल्यवान चीज है तो हम कैसे बचाकर रखते पैसे रखते। चलो अभी इतनी उम्र बाकी है तो इतने पैसे हमको चाहिए तो अपना कैसे गुजारा हो जाएगा, तो हमें तो इतना ही लिमिटेड समय मिला है, अभी इसमें हमारा बायोसेप जिसको कहते मराठी में
तो बिना कारण का समय सुनी बन जाता है, उसको बता बता कर हम उसमें लगाएंगे, अपने स्वरूप के बारे में ज्ञान करने में लगाएंगे, तो स्वरूप का चिंतन करने में, स्वरूप का अनुभव करने में लगाएंगे, बड़ी कार्यकारी होती है। क्योंकि बाकी ये जो लौकिक चीजें हो, कमाना और फिर उसको भोगना वो तो व्यर्थ ही है, क्योंकि उसके कुछ अपना कल्याण होने वाला नहीं। अनादि से अनंत भवों में यही अंतर है, मनुष्य जन्म भी अनंत बार मिला है, उसने यही किया है और फिर ये हमारा ये जन्म मरण अभी तक चालू है, उसका अर्थ हमने सही प्रयत्न नहीं किए, सही पुरुषार्थ नहीं किया। हमने मुझे मानते हैं कि मनुष्य कर्म करता है और ईश्वर उसका फल देता है, ये अनुमति के मान्य, तुम अपना कर्म करो, तुम कर्म करो या क्या करो वो कुछ जानता नहीं, अन्य वस्तु की शरीर की क्रिया करना या अन्य अन्य चीजों की क्रिया करना ऐसा वो मानते नहीं कर सकता, मगर उसको करो ऐसा उनका उद्देश्य, इस कर्म के बारे में उनको कुछ सही जानकारी नहीं है, तो मनुष्य कर्म करता है ईश्वर उसका फल देता है ऐसा वे मानते हैं। उनकी ईश्वर संबंधी मान्यता ही बिल्कुल गलत है, शायद उन्होंने ईश्वर को ऑनररी सुपर सर्वेंट का पद बहाल कर दिया। ऑनररी यानी कुछ चार स्तर लेते हैं, और सादा सर्वेंट नहीं, सुपर सर्वेंट, सब हमारे काम कर दे, हमारे सारे वो सुविधाएं दिखी जाएगी, तुम पुण्य पाप करो और ईश्वर उसका हिसाब किताब रखकर तुम्हें फल देगा। लेकिन कर्म की यह सारी व्यवस्था स्वयं चलित है, ऑटोमेटिक है, जीव के प्रति समय के मूलराग द्वेषों का नाप इन कर्मों से हो सकता है, सभी अपराधी हमारे लौकिक कायदे कानून से छूट सकते हैं परंतु कर्मपाश से नहीं छूट सकते। एक खून करे या चार खून करे, फांसी तो एक बार ही लगनी है, ऐसा कहने वालों को कर्म के कायदे कानून का ज्ञान नहीं है। कर्म के इस कानून में भोगने के कोई रास्ते, भागने के कोई रास्ते नहीं है, भ्रष्टाचार नहीं है, रिश्वतखोरी नहीं है, अपराध करे और किसी का भोग वसूल अदाई से छूट जाए ऐसे वो कर्म नहीं है। तुम कहोगे अच्छा कर्म इतना बलवान होगा तब उसकी ही पूजा करनी पड़ेगी, उससे कहना पड़ेगा कि अरे बाबा अब तो तुम मुझे छोड़ दो। कोई कहता है अज्ञान में ही हम सुखी थे, हाँ हिंदू थे, इग्नोरेंस इज ब्लिस, ये आपका वाक्य डालेगा कि अज्ञान में ही हम सुखी थे। कर्म का ज्ञान होने से हमें सतत कर्म का भय लगा रहता है, अपना स्वरूप ठीक नहीं पहचानने से ऐसे घोटाले होते रहते, इसलिए कर्म की दस अवस्थाओं का स्वरूप देखने से पहले मैं पुनः तुम्हें अपने स्वयं के स्वरूप और सामर्थ्य की याद दिलाना चाहती हूँ। प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि वह निम्नानुसार विचार करके अपने आप को बता दे कि हे जीव, तू तो चेतन है, अनादि अनंत है, स्वयं सिद्ध है, किसी ने तुझे उत्पन्न नहीं किया, तू अपने ज्ञानादि अनंत गुणों से परिपूर्ण है, तू स्वशक्ति के कारण टिका हुआ है और स्वयं की परिणमन शक्ति के कारण परिणमित भी हो रहा है। ये सारे हैं ना पंचाध्याय में, स्वयं सिद्ध है, कितने स्वयं सिद्ध टिकने में भी और परिणमन करने में भी, अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय अपने ही योग्यता से अपने प्रकार में उत्पन्न होती है। ये एक एक वाक्य में कितना गहरा है, सारा ही गुणागम का रहस्य इसमें बना दिया। देखो अनंत गुणों की प्रत्येक पर्याय कौन उत्पन्न करता है, वो अपने ही योग्यता से पर्याय अपने द्रव्य पर भी नहीं उसका डाला, निकाली उपादान में भी नहीं लगे, प्रत्येक पर्याय की अपनी योग्यता से वो पर्याय उत्पन्न होते, अपने प्रकार में उत्पन्न होते, उसका काल भी निश्चित है, उन्हें जो पर्याय होगी वही होगी और जिस समय होगी वही उसी समय होगी, उसको पहले ला दो ऐसा भी नहीं हो सकता। प्रत्येक द्रव्य अपने पर्यायों का करता है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य की पर्यायों का करता नहीं हो सकता, इससे सिद्ध होता है कि स्वभाव परिणाम यानी शुद्ध पर्याय हो, अत अथवा विभाव परिणाम में अशुद्ध पर्याय हो उसका कर्ता बहुविवक्षित द्रव्य ही है, अन्य द्रव्य नहीं। हमारा जो विभाव परिणाम चल रहा है वो हमारे अपने कारण से है, पर द्रव्य हमें विभाव नहीं करा। जीव स्वयं निमित्ताधीन होकर विभाव करता है, अभी ये बात चल रही है, विभाव की और अशुद्धता की जो बात चल रही है शाम को। तो वैभाविक शक्ति है, तो वैभाविक शक्ति है इसलिए जीव को विभाव करना पड़ता है, इसी पराधीनता में। वैभाविक शक्ति का अर्थ ही ऐसा होता है कि जो स्वयं निमित्ताधीन होकर विभाव रूप परिणाम करे, वो वैभाविक शक्ति स्वभाव रूप ही परिणाम करते। तो विभाव रूप तो ये जीव की उस अपने पर्याय की योग्यता से ही वो निमित्ताधीन होकर विभाव रूप परिणाम करता है। ये उस वैभाविक शक्ति का उसका विकार है, उसका विभाव परिणाम है। ये जीव तेरे जान्य रूप पर्याय का कर्ता तू स्वयं ही है। ये के कारण यह ज्ञान नहीं हुआ, परंतु तेरी अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता से तेरा जानना हुआ। देखिए ये बहुत बात महत्व, क्योंकि हम आज तक ऐसे ही मान लेते थे सामने चीज है इसलिए हमें ज्ञान हो रहा। ये निमित्त होता है, परंतु जानने का कार्य जानने की अपनी पर्याय स्वयं से करे, उसकी अपनी स्वतः प्रकाशक शक्ति है कि जिसके कारण वो जानती है चीजें, अपने को भी जानते हैं और अन्य को भी जानते हैं। तो हम क्या समझते हैं, सामने पदार्थ है इसलिए ज्ञान होता है, वो तो बौद्धों की मान्यता है। वो तो शास्त्र में आता है ना, प्रश्न किया शिष्य ने फिर उत्तर दिया, तो प्रश्न उत्तर से वो अन्य मति की जो मान्यता है वो कहीं अपने में तो छुपी नहीं है, इसलिए निकालने के लिए उनको कहीं जाकर बौद्धों को नहीं सुधारना है। जैनी जो है वो जो स्थित रहे हैं पीछे आए हैं, तो उन्हें कहीं वैसी मान्यता नहीं होना इसको समझाने के लिए जो वो शिष्य के मुंह में प्रश्न डालकर समझाते और फिर उसका सही निराकरण करते उत्तर देते। तो ध्येय के कारण ज्ञान नहीं हुआ, परंतु तेरी अपनी ज्ञान पर्याय की योग्यता से तेरा जानना हो रहा है। लेकिन हमने देखा था कि प्रत्येक गुण की प्रत्येक पर्याय अपनी योग्यता से स्वकाल में उत्पन्न होती है, तो ज्ञान गुण की प्रत्येक पर्याय अपने स्वकाल से अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है। तो हम हमारा ध्येय कौन सा है, उस समय हम क्या जान रहे हैं, ये भी निश्चित होता है। स्वर को भी जानने का निश्चित है और स्वर का जो शुद्धात्मानुभव होगा वो भी निश्चित है, उसका समय भी निश्चित है। तेरे चारित्र गुण की जो राग द्वेष रूप पर्याय हो रही है उसका कर्ता भी तो स्वयं ही है। पहले तो हमें अपने को स्वीकार करना है कर्ता। अभी तक क्या मान रहे थे, सामने वाला जो मुझको क्रोध उत्पन्न करा, वो तो ये सामने आता है ना तभी मुझे क्रोध होता, नहीं तो ऐसे में बहुत अच्छा हूँ। लेकिन क्या माना, सामने वाले ने मुझे क्रोध उत्पन्न किया, तो ये अपना दोष तो स्वीकार करो कि ये कहाँ हो रहा है कार्य, तो मेरे में हो रहा है, तो मैं इसका करता हूँ, मैं द्रव्य करता और पर्याय उसका कार्य, ये यहाँ समझा रहे। अलग अलग जगह अलग अलग अपेक्षा से भी समझाएंगे, परंतु परद्रव्य तो कभी करता होगा ही नहीं। जब अज्ञान अवस्था है तब उसको कहते हैं तू ही वो जीव ही उसका ज्ञान राग का करता है। जब वो ज्ञानी हो जाता है, समय दृष्टि हो जाता है, तो वो राग का करता भी उसको नहीं करता। तो वो कहते हैं राग अपनी पर्याय की योग्यता से जटा में उत्पन्न हुआ है, वो ज्ञान वो उसको जानने वाला वो भी नहीं करता। चारित्र गुण की जो राग द्वेष रूप पर्याय हो रही है उसका कर्ता भी तू स्वयं ही है। कोई भी परद्रव्य तुझे राग द्वेष नहीं कराते। भगवान को देखने से शुभ राग हुआ और शत्रु को देखने से द्वेष हुआ, ऐसा वस्तु का स्वरूप नहीं है। देखो ये सारी बातें ये पंचायती काल में बहुत आई है। तब हम मैंने जब ये लिखा था तब हम हमारे दोनों का जो वो पंचायती काल का हमारा साधन था, सबकी बात है 99 जो लिखते हैं, लेकिन ये बहुत क्लियरली उसकी कर्म की जीव से स्वतंत्रता बच गई, परंतु वर्तमान में रूपी सुग्रह को जान रहा है। सभी इंद्रियों द्वारा जानने वाला तो तू स्वयं है, परंतु जानने में आ रहे हो स्पर्श संबंध और शब्द। देखो क्या कहते हैं, हम तो भी है अरूपी है, ज्ञान अरूपी है ना। और अभी जो वर्तमान में पांच इंद्रियों के द्वारा जो हम जानते हैं वो किसको जान रहे, रूपी को पुद्गल को जान रहे। ये तो सभी पुद्गल की पर्याय है, इसलिए इनका कर्ता पुद्गल है। तो हमें जो इंद्रियों द्वारा जानने में आ रहा है वो सारे पुद्गलों की पर्याय है। तो पुद्गलों की पर्याय का कर्ता कौन होगा, पुद्गल। और ज्ञान की जो पर्याय उसका कर्ता मैं स्वयं हूँ। इतना तो बहुत बराबर समझना चाहिए, परंतु इसलिए क्या कहें, इन पुद्गलों की पर्याय का कर्ता पुद्गल है। अभी ये सारा इसका शरीर का स्पर्श रोक बंद हमारे ध्यान में आए, उसको जाना परंतु ये पुद्गल की पर्याय होते हुए भी उसको कैसा जाना, वो नहीं जाना। पुद्गल की पर्याय को उसका करता पुद्गल है, तो उसको पुद्गल जानना था, परंतु वैसा न जानकर वैसा न मानकर जो न मैं हूं ऐसा मान लिया उसने। परंतु शरीर ही पुद्गल में जो न मैं हूं मानकर तुमने एकत्र बुद्धि की है, ये सारी पर्याय मेरी है मानकर तुमने उन्हें तो बुद्धि की है। वो गोरापन मेरा, मैं गोरी मैं काली, वही माना ना, पुद्गल की पर्याय है, पुद्गल की मैं मानकर वो मेरी पर्याय। अभी इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मुझे बुखार आया, इसमें जो आकुलता पड़ता है तो ये आकुलता कम हो जाएगी जब वो पुद्गल की पर्याय जानेगा। इसमें व्यक्त को भी राग दोष विद्यमान है, कम्युनिकेशन होने के बाद भी ये बातें होगी, परंतु ऐसी क्यों आकुलता नहीं दे जो अनंत अनुभव अभी तो मैंने तो बुद्धि की है, मैं ही इनका करता हूँ मानकर करते तो बुद्धि की है। और पुद्गल की पर्याय उनको जो मात्र जान रहा था, परंतु मैं इनको भोगता हूँ मानकर तुम्हें भोगते तो बुद्धि की है। तो मैंने गुलाब जामुन रखा, तो वो गुलाब जामुन की जो मीठी पर्याय है उसको जाना, तो जी क्या मानता है, खाली मैं जान रहा हूँ मानता है कि मैं भोग रहा हूँ मानता, अकेले जान रहा हूँ मानेगा तो कुछ भी जानेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो कुछ करेगा भी मुंह में गया उसको भी जान रहा है, मीठा भी उसको, फिर वो मीठेपन में उसको जो आनंद आ रहा है यानी वो भोग रहा है, मैं उसको भोगता हूँ, उसे उसको मान्यता है। मेरे सारा आयुक्त कर्तृत्व मृत्युत्व उसको लगेगा, पदार्थ में एकत्र हूँ तो कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप में तेरी जो विपरीत मान्यता है यही मिथ्यात्व है, श्रद्धा की विभाव पर्याय है। श्रद्धा पंथी में जो असत्य श्रद्धा रूप पर्याय है, देखो ये परद्रव्य में जो मान्यता की ना ये तो मिथ्यात्व है, बोले श्रद्धा की जो विपरीत पर्याय, श्रद्धा का जो विभाव है, और इस पर्याय का कर्ता कौन है, तो जो असत्य श्रद्धा को पर्याय है वह भी तेरे अपने कारण में है। कर्म ने तुझे मिथ्या के रूप परिणमित नहीं किया, तो दर्शन मूल्य कर्म है इसलिए भी मिथ्या के रूप परिणमित नहीं हुआ, क्योंकि वो उसकी अपनी पर्याय है, उसका कर्ता जीव है, कर्म उसका कर्ता नहीं। तुझे यदि समय को प्राप्त करना हो तो वह पर्याय भी तेरे करने से प्रकट होगी। दूसरा कोई भगवान गुरु कर्म या नित्य तुझे सम्यक प्रदान नहीं करेगा। तू जो पुद्गल को जानता है तो जानने का यह कार्य तेरी ज्ञान पर्याय में स्वयं के कारण होता है, पुद्गल के कारण नहीं। इसलिए तू अपने ज्ञान पर्याय का कर्ता भोगता है, परद्रव्य का कर्ता भोगता नहीं है। हमें ज्ञान का ही कर्ता और ज्ञान पर्याय का ही भोगता है, और हम मानते हैं कि हम परद्रव्य को भोगते हैं। आम खा आया तो क्या मानते हम आम रस को भोगा हमें। परंतु एक्चुअल क्या हुआ, ज्ञान पर्याय जो उसमें ज्ञान नहीं जाना तो ये आम ऐसा है ऐसा ज्ञान नहीं जाना, तो हम उस ज्ञान पर्याय को भोग रहे। मानते क्या है, हम परोद्रव्य को भोग रहे, परद्रव्यों को जानते हैं, अकेला वो जानता ही नहीं तो उसके जानते जानते क्या होता है, तो परद्रव्यों को जानते हुए तो राग द्वेष भी चरण में खो रहा है। यानी मीठा लगा ये अच्छा मुझे चाहिए, कड़वा लगा नहीं मुझे चाहिए, उसके प्रति तो ये भी हुआ उसको। इसलिए राग द्वेष का भी तू करता बोलता नहीं ऐसा कह सकते हैं, वास्तव में कह सकते ही लिखा, क्योंकि जब अज्ञान दशा में उसको कह सकते ही लिखा। और वास्तव में क्या होता है, वास्तव में उन राग द्वेषों के कारण तो दुखी है, परंतु पर पदार्थों को भोगने के कारण मैं सुखी दुखी हो रहा हूँ ऐसा तू मान रहा है, वह तेरा अज्ञान और मिथ्या है। ये दुखी हूँ किस कारण है, राग द्वेष के कारण, परंतु ये मानता क्या है, परद्रव्यों के कारण मैं दुखी हूँ। ये उसकी मान्यता, ये जो मिथ्यात्व है, ये जो उसका अज्ञान है, ये उसी कारण है। ये दूसरों को मैं दूसरों के कारण में सुखी दुखी हो रहा हूँ ऐसा जो इसकी मान्यता है वही ऐसा जो जानता है वही उसका अज्ञान है मिथ्यात्व। किसी भी परद्रव्य परजीव कर्म या निमित्त में किसी भी जीव को आज तक सुखी या दुखी किया ही नहीं है, राग द्वेष उत्पन्न कराए ही नहीं। हम तो आज तक यही मानते हैं कि मुझे ये चीज नहीं मिली इसलिए मैं दुखी हूँ, अपनी ही भ्रांति एवं अज्ञान के वश से दुखी है। पहले तो परद्रव्यों को सुखी दुखी एवं राग द्वेष का कारण मानता था, शास्त्र साध्या करने के उपरांत और तूने कर्मों को राग द्वेष का करता और सुख दुख का दातार मान लिया। वो चारित्र नहीं है ना इसलिए हमको राग द्वेष होते हैं, वे चाहता आसाता है ना इसलिए हम सुख दुखी होते हैं, उन्हें कर्मों को करता उठता है वो सारा देने वाला सुख दुख का देने वाला मान लिया। कर्म ही मुझे संसार में भटका रहे हैं, कर्म ही मुझे राग द्वेष मन राग द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं, कर्म ही मुझे अज्ञानी बना रहे हैं, वही मुझे सुनने को नहीं देते। अरे ये सारे ही लोग है देखो, मन राग द्वेष उत्पन्न करा रहे हैं सारी कर्म नहीं है, कर्म ही मुझे अज्ञानी बना रहे हैं ज्ञान नहीं है, वही मुझे सुनने को नहीं देते वे दर्शन नहीं होंगे, वही मुझे अच्छे पीर दे रहे हो साटा योजना है, आदि मिथ्या कल्पनाएं तूने कर ली, मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं क्योंकि वे मुझे अच्छी गति में ले जाएंगे ऐसी मान्यता तूने कर ली, तो क्या बिगड़ा इसमें। देखो क्या है, मुझे अच्छे परिणाम करके अच्छे कर्म बांधने हैं, कर्म संबंध में नहीं है, बहुत दूर मूल बात है। कि हम जब जब जैसे जैसे परिणाम करते हैं तब तक कर्मों में भी ऐसी ऐसी अवस्थाएं बनती है और उनके कारण जीवन के परिणाम उनको ऐसा नाम दिया जाता है, बताया गया। परंतु जी क्या मानता है, कर्म ने मेरे ये परिणाम कराया, मैंने कर्म में ऐसा ऐसा किया, मैंने कर्म का हमेशा बना रहेगा, वो पूरा आवरित हो गया ऐसा कभी होगा ही नहीं। हाँ, देश घाती का वहाँ उदय है, उदय नहीं नहीं अप्रकट जो है ना अभी,
तो
उसका सर्वघाती का उदय है, सर्वघाती का उदय आवरण है पूरा। हाँ, यानी अभी अवधि ज्ञानावरण का उदय चल रहा है, अभी वर्तमान में, भविष्य में नहीं पड़े वो।
और ज्ञान की अपेक्षा वो अप्रकट है,
अप्रकट है।
कर्म की अपेक्षा से वो
उदय है, उदय है, अवधि ज्ञानावरण का भी उदय है, अभी केवल ज्ञानावरण कर्म का उदय चल रहा है। देखो क्षयोक्षम ज्ञान कहते हैं, नीचे से पांचवी छठी लाइन, जीव जब स्वयं मोह राग द्वेष रूप परिणमन करता है तब मोहनीय कर्म की उदय रूप अवस्था पाई जाती है। इसलिए जीव के रागादि भावों को औदयिक भाव कहते हैं। जीव सर्वप्रथम जब सम्यक को प्राप्त करता है तब कर्मों में दर्शन मोनीय और अनंतानुबंध कर्म की उपशम रूप अवस्था पाई जाती है, इसलिए जीव के उन भावों को औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। ये बात है न, कर्म में कौन सी अवस्था है वैसे जीव के उस सम्यक्त्व को भी औपशमिक सम्यक्त्व कहते हैं। जीव जब केवल ज्ञान रूप पर्याय स्वयं में स्वयं के निज शक्ति से प्रकट करता है तब कर्म में भी उसके अपने कारण से ज्ञानावरण कर्म का क्षय पाया जाता है, इसलिए जीव की उस ज्ञान पर्याय को क्षायिक ज्ञान कहते हैं। ये केवल ज्ञान को क्षायिक ज्ञान कहते मालूम है ना आपको, और उसके पहले क्या कहते अन्य चार ज्ञानों को क्षोक्षम ज्ञान। क्षायिक ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो जीव का स्वयं का भाव है, स्वभाव है। जैसे अभी मेघ आए तो मंद प्रकाश हुआ और मेघ चले गए तो पूरा प्रकाश हुआ, तो मेघों ने प्रकाश किया तो वो सूर्य का ही है, सूर्य का ही प्रकाश। वैसे केवल ज्ञान वो जीव की पर्याय जीव के अपने कारण से प्रकट हुई है, जब वो प्रकट होती है तो वहाँ सामने ज्ञानावरण का कर्म रहता ही नहीं है, उसका क्षय हो जाता है, तो उसको कहते हैं कि वो क्षायिक ज्ञान है। परंतु क्षय ने वो कर्मों ने उसे क्षय ने उसको निर्माण नहीं किया, अभी भी कर्मों के क्षोक्षम ने ज्ञान उत्पन्न नहीं किया है। ज्ञान तो जीव का स्वभाव है। क्षायिक ज्ञान कर्म के क्षय से उत्पन्न नहीं हुआ, वह तो जीव का स्वयं का भाव है, स्वभाव है, जीव के स्वयं के कारण वह प्रकट हुआ है। देखो ये जो स्वतंत्रता है ना, ये ख्याल में आनी है। यानी जब जब क्षय ज्ञान होता है तब तक वहाँ कर्मों का क्षय होगा, सामने वो पाया भी जाता है, परंतु वो कर्मों के क्षय से ज्ञान नहीं उत्पन्न हुआ। ज्ञान तो जीव के अपने ज्ञान गुण में से प्रकट हुआ है। स्वभाव में से उत्पन्न हुआ। उसी प्रकार दूसरा पैराग्राफ, हे जीव तेरा जो वर्तमान का क्षयोक्षमिक ज्ञान है, ज्ञान का जो उघाड़ है वह कर्म के क्षयोक्षम ने उत्पन्न नहीं किया, तेरे अपने कारण स्वभाव में से ही उत्पन्न हुआ है। यानी अभी जो हमारा ज्ञान है वो हमारा अपना है, अपने कारण से उत्पन्न हुआ है, वो हमारे ज्ञान पर्याय की योग्यता है। कर्मों के क्षयोक्षम ने हमारा ज्ञान उत्पन्न नहीं कराया है। कर्म की लिमिट कितनी उसने क्षयोक्षम करे इतनी, और हमारे निमित्त है, सामने निमित्त रूप से हमें उपस्थिति है। हम जब इतना ज्ञान का उघाड़ है तो कर्मों में अभी क्या परिस्थिति है, तो कर्मों में क्षयोक्षम हो रहा है। ये एक दूसरे को बताने वाले करने वाले नहीं है। अभी हमको 104 डिग्री बुखार आया और यहाँ थर्मामीटर लगा कर देखा तो कितना हुआ, 104 है। तो थर्मामीटर ने बुखार उत्पन्न किया क्या, बताया खाली बताया। वैसे कर्म की क्या अवस्था है, यहाँ हम कर्म की तरफ देखते हैं तो कर्म की तरफ हमें क्षोक्षम दिख रहा है, तो जान लो कि पक्का यहाँ जीव का क्षोक्षम ही ज्ञान चल रहा है। कर्म की तरफ देखे तो अरे क्षय दिखा है, किसी अवधि ज्ञानी को पता चलता है अरे यहाँ कोई ज्ञानावरण कर्म है ही नहीं है, क्षय हो चुका है, तो वहाँ क्षय ज्ञान। ये उसको बताने वाला है, करने वाला नहीं है। कर्म में अपने में, देखो ये बता दे, ये भी पढ़ा नहीं ना पहले, ऊपर का तो समझ में आया ना कि क्षोक्षम ज्ञान भी कर्मों ने उत्पन्न नहीं किया है, जीव के अपने कारण उत्पन्न हुआ है। कर्मों की मर्यादा उनमें अपने में क्षोक्षम होने तक ही, अपने में ने कर्मों में, कर्म क्या कर सकता है तो कर्म स्वयं में क्षोक्षम रूप परिणमित हो सकता है। जीव में क्या करता है, कुछ नहीं करता। निमित्त उपादान में क्या करता है, कुछ भी नहीं करता, बिल्कुल कुछ नहीं करता। तो कर्मों की मर्यादा कितनी है, पुद्गल की मर्यादा कितनी है, उसके अपने तक ही लिमिटेड है।
वो अपना स्वचतुष्टय छोड़कर बाहर जाता ही नहीं है, यही उसकी मर्यादा है। तो कर्मों की मर्यादा उनमें अपने में यानी कर्मों में अपने में सूक्ष्म होने तक ही है। जीव के भावों में वे कोई भी फेर हेर फेर असर मदद नहीं करते। हम कहेंगे घाती कर्म क्यों कहा, क्योंकि जीव के गुणों का घात करते हैं, ये तो कथन करने की पद्धति है। परंतु असल में क्या है, वो जीव के गुणों का कुछ भी असर हेर फेर मदद घात कुछ नहीं करते, ये असल की बात है। फिर भी घाती कर्म क्यों, क्योंकि जीव अपने स्वयं की योग्यता से हीन रूप परिणमिता ज्ञान दर्शन वाला हीन वाला ज्ञान वहाँ है, तब यह सामने वैसा कर्मों की अवस्था पाई जाती है, तब हम कहते हैं कि कर्म ये आवरण डालने वाला कर्म है। क्योंकि शास्त्र की ये तो चाबी है शास्त्र को पढ़ने की, इसके बिना अगर शास्त्र पढ़ेंगे तो निमित्ताधीन दृष्टि हो जाएगी, शास्त्र पढ़कर निमित्ताधीन दृष्टि होगी। वो निमित्त के कथन को किस तरह से अंगीकार करना, किस तरह से उसका अर्थ निकालना, ये मूल चाबी कभी नहीं भूलना। जीव भी अपने भाव करने तक ही मर्यादित है। देखो जीव भी अपना स्वचतुष्टय स्वद्रव्य स्वक्षेत्र स्वकाल स्वभाव छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, तो उसके अपने भाव अपने पर्याय तक ही वो जीव लिमिटेड है। परद्रव्य के पर्याय में वो कुछ नहीं करेगा, कर्म में वह कुछ भी उथल पुथल बंध उदय उपशम क्षोपशम आदि कर ही नहीं सकता। जीव और कर्म दोनों ही एक ही समय में अपने अपने में स्वयं में परिणमित होते हैं, समय दोनों का एक है। जीव के जिन परिणामों के समय कर्म की जो अवस्था नियम से होती ही होती है, उस अवस्था के नामानुरूप जीव के भावों को भी वैसे ही नाम बताए गए हैं, यानी दोनों के नाम सदृशता है, क्योंकि एक ही समय में दोनों के ऐसे जीव का विशिष्ट भाव में कर्म की विशिष्ट अवस्था है, तो उस विशिष्ट अवस्था के कारण जीव के भावों को भी वैसा नाम दे दिया। यानी क्षोक्षम ज्ञान ज्ञान है और क्षय ज्ञान कुछ अलग टाइप का ज्ञान, ऐसा नहीं, वो ज्ञान तो ज्ञान ही है, परंतु सामने कर्मों की अवस्था बताने के लिए उसको हमने क्षोक्षम ज्ञान कह दिया। जीव द्रव्य का अस्तित्व किसी भी कर्म के निमित्त से नहीं है, जीव तो स्वयं सिद्ध वस्तु है। ये पंचाध्याय आई कि नहीं, यहाँ कहीं भी जाओ आप, कोई भी शास्त्र निकालो, यही बात आएगी। अनंत गुणमय चैतन्यमय स्वभाव को कर्म की थोड़ी भी अपेक्षा नहीं है, यानी जीव जो अनंत गुणमय ऐसा जो चैतन्यमय जो है, उसको किसी अन्य द्रव्य की कोई भी जरूरत नहीं है, अपेक्षा नहीं है मदद की या कहीं टिकने के लिए परिणमन के लिए कोई भी आवश्यकता नहीं। अनादि से अनंत काल तक जीव स्वयं के स्वभाव रूप से कायम एक रूप रहता है, उसका स्वभाव कभी बदलता नहीं है, जैसा का वैसा अनादि से अनंत काल तक रहेगा, उसी को पारिणामिक भाव कहते हैं। अनंत गुण में स्वभाव वस्तु के स्वयं के कारण है, है और है, त्रिकाल है, किसी भी कर्म या कर्म के अभाव के कारण वह नहीं है। नाम दिया, खाली बताने के लिए नाम दिया, हमने ज्ञान को अपने क्षोपक्षम ज्ञान कहा, तो क्षोपक्षम ज्ञान अपना भाव है कि कर्म का है, अपना भाव है ना। क्षोपक्षम ज्ञान क्या है, ज्ञान है कि क्या अलग कुछ ज्ञान है, तो जीव का भाव है कि कर्म का भाव है, जीव का, तो क्यों उसको नाम दिया क्षोपक्षम, क्योंकि जब वो क्षोपक्षम ज्ञान रूप उसका जो विशिष्ट ज्ञान है, तब सामने कर्मों में क्षोपक्षम पाया जाता है, इसलिए उस ज्ञान को भी हमने क्षोपक्षम ज्ञान कह दिया। अभी सम्यक्त्व तो सम्यक्त्व होता है, सम्यक्त्व क्या है कि जो स्व है उसमें स्वपने की श्रद्धा, वो सम्यक्त्व, तो उसमें कैसे डिफरेंस करना कि क्षोपक्षम, ये औषमिक सम्यक्त्व वाला स्व कोई अलग होगा और क्षौक्षमिक वाला स्व अलग होगा और क्षायिक स्व अलग होगा, सब एक ही
परंतु
तब सामने कर्म कैसा है,
दर्शन होने कर्म है
तो कभी क्षौक्षम है कभी उपशम है कभी क्षायिक है, उस अपेक्षा से हमने सम्यक में भी तीन भेद बताया। ऐसा वो बराबर उसकी भिन्नता ख्याल में आनी चाहिए, दो द्रव्यों की भिन्नता सदैव, उसके बिना भेद ज्ञान करेंगे कैसे हम। यानी जो ये पारिणामिक भाव है वो तो किसी कर्म के कारण है ही नहीं, वो तो स्वयं सिद्ध जो अनंत गुण में जो स्वभाव है वो एक रूप रहता है, जैसे निगोध हो या सिद्ध हो या हमारी अभी की पर्याय। परंतु अभी पर्याय की तरफ मत देखो, ये अनंत गुण में चैतन्यमय पदार्थ में जो हूँ वो मैं स्वयं सिद्ध वस्तु हूँ, किसी ने बनाया नहीं मुझको, अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है, और उस स्वभाव में कुछ भी वधघट नहीं होती है, उसमें कुछ कम अधिक नहीं होता, पर्याय में भले कम अधिक होता है परंतु स्वभाव तो जैसे के वैसे परिपूर्ण है, अभी भी स्वभाव परिपूर्ण है, स्वभाव में कभी कोई लिमिट नहीं होती, मर्यादा नहीं होती, बस इतना ही ज्ञान हो गया वो स्वभाव, ऐसा नहीं। हमारा स्वभाव ज्ञान है तो कितने का जानेगा, सबको जानेगा, उसमें कोई भी वस्तु बिना जाने हुए छूटेगी नहीं, ऐसा स्वभाव है हमारा। अभी तो एक लोकालोक है, ऐसे अनंत भी लोकालोक होते तो भी वो उसके एक कोने में छिप जाते, केवल ज्ञान, ऐसा केवल ज्ञान। जैसे आकाश के प्रदेश कितने अनंत है और उसके अनंत में भाग में छह द्रव्य पाए जाते, क्योंकि लोकाकाश से अनंत गुणा आलोकाकाश है, तो आकाश में अवगाहन तो ऐसा है विचित्र कि वो तारों को अपने एक अनंत में भाग में संभाले, ऐसे जैसे आकाश के अवगाहन है वैसे जीव के ज्ञान की योग्यता कैसे, ये जो सारा जो अनंतानंद जो कुछ द्रव्य गुण पर्याय अविभाग प्रतिच्छेद सारे के सारे
ज्ञान
वो ज्ञान के एक अनंत में भाग में जान,
इसीलिए कहते कि स्वभाव को
ऐसे ज्ञान की कपड़ी इसीलिए कहते कि स्वभाव को कोई लिमिट नहीं होती,
कोई भी
लिमिट विकास की शक्ति है ना हमारे में, उसका कोई भी लिमिट लेस उसका विकास हो जाए, ऐसी उसमें शक्ति है, दरेक जीव
कैपेसिटी है,
स्वभाव तो ताकत है, कैपेसिटी है,
पूर्ण ताकत,
विभाव पर्याय हो या स्वभाव पर्याय हो यह परिपूर्ण ताकत अनादि अनंत कायम रहती है, कोई तीव्र मिथ्यात्व हो तो भी उसका ये अनंत गुण में ये जो स्वभाव उसमें कुछ खोट नहीं आती, वैसा है वो परिपूर्ण है चैतन्यमय, और कोई केवल ज्ञानी हो तो उसमें स्वभाव में से कुछ निकल गया बाहर ऐसा भी नहीं होता, स्वभाव तो एक रूप जैसा का वैसा जितना का उतना कायम
रहता
है, सदैव विद्यमान रहती है अर्थात आदि रहित और अंत रहित सदैव विद्यमान रहती है, कौन ये ताकत परिपूर्णता
वैसी की वैसी सदैव
उसमें किंचित मात्र भी हानि वृद्धि नहीं होती
में रहेगी,
वैसी की वैसी सदैव थी अब है और भविष्य में रहेगी,
सुखमय है
हे जी,
फिर भी तू दुखी,
तेरा स्वभाव अनंत ज्ञानमय और अनंत सुखमय है फिर भी तू दुखी क्यों है, इसका कभी तूने विचार किया है, तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण था होने वाले
विभाव
राग द्वेष आदि विभाव के कारण
इस कारण
तथा विभाव रूप तो अपने आप को मान रहा है इस कारण तो दुखी, देखो एकदम
तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह
माफ करने जैसी क्या है कि तेरे स्वयं के अज्ञान एवं मोह के कारण, मैंने पहले तो राग द्वेष का कारण बताया पर द्रव्य के कारण नहीं, तेरे अपने अज्ञान और मोह के कारण होने वाले राग द्वेष आदि जो विभाव है उन विभाव के कारण ये जीव दुखी है, और क्या और क्यों दुखी है कि विभाव रूप वो अपने आप को मान रहा है, अकेले विभाव होते तो कोई बात नहीं थी, सम्यक दृष्टि को भी अभी पर्याय में राग द्वेष है विभाव है
अपने को स्वभाव रूप मान रहा है,
परंतु वो अपने अपने को विभाव रूप नहीं मान रहे, अपने को स्वभाव रूप मान रहे, इसलिए उसको विभाव की भी चिंता नहीं होती,
लेना देना
उसको मालूम ये विभाव भी आ रहे और जाएंगे छुट्टी, मुझे इनसे कुछ लेना देना नहीं, परंतु ये मिथ्या तो अवस्था में क्यों दुखी है, एक तो अज्ञान और मिथ्यात्व के कारण राग द्वेष रूप विभाव होते हैं और वो विभाव रूप में हूँ ऐसा वो मान रहे, इसलिए जीव दुखी हुए
तू स्वयं को
इस कारण तो दुखी है। तू स्वयं को
विश्वास रख,
स्वभाव रूप मान,
उसका भरोसा ही नहीं होता
ना। विश्वास रख, देखो ये विश्वास रखने की बात, उसका भरोसा ही नहीं होता ना।
समझाएंगे
ज्ञानी तो समझाते हैं, और समझा के चले जाएंगे, वो भी कितना समझाएंगे, उनकी भी विभाव कितना होगी, उनको दूसरे को समझाना ये भी उनका विभाव है, तो उनको तो विभाग में रुचि है ही नहीं है। जब तक वो विवाह सहज रूप से आता है तब तक है नहीं, तो वो बता के चले जाएंगे। सामने वाला मानता है तो माने, नहीं मानते तो उसका जो वो तो जानते हैं, अभी निकाल दिया है उसे मानेगा। तो इसलिए कहते हैं क्या था कि विश्वास रख। अनंत ज्ञानियों ने यही बात बताई, कोई अन्य ज्ञानी आएगा और कोई अन्य मार्ग बताएगा, इसी बात मार्ग तो एक ही। इस प्रकार के विश्वास के साथ जो जीव अपने स्वरूप का ज्ञान करने लगे, स्वरूप में हीनता करने लगे, उनका मिथ्यात्व और अज्ञान तो दूर हुआ ही। मैं पहले स्वरूप का ज्ञान किया और स्वरूप में एकाग्र हुए तो मिथ्यात्व और अज्ञान तो चला ही गया, साथ ही साथ उनके रागादिकों की उत्पत्ति कम होती गई। होती गई क्यों मिलेगा, पहले अनंत अनुबंधी कम हुआ, फिर अप्रत्याख्यान गया, ऐसे ऐसे कम होती गई। अज्ञान अवस्था में इष्ट संयोगों की प्राप्ति में जो हर्ष अनुभव में आता था, उनकी अपेक्षा यह स्वभाव उत्पन्न सुख जो भिन्न जाति का अपूर्व सुख है उनके अनुभव में आया। पहले तो इष्ट संयोग में उसका हर्ष विषाद था, यह हर्ष होता था, इष्ट में हर्ष और अनिष्ट में विषाद होता था, दुख होता था। अभी वो तो हर्ष कोई अलग ही जाति का, और अभी जो स्वभाव में से जो अतीन्द्रिय आनंद उत्पन्न हुआ उसकी जाति ही अलग है। तो जो अपूर्व सुख था, अपूर्व क्यों था, पूर्व में कभी ऐसा अनुभव नहीं किया था, मिथ्यात् अवस्था में तो उसका अनुभव होने का सवाल ही नहीं आया। तो ऐसा जो अपूर्व सुख है वो उनके अनुभव में आया। इस सुख का अनुभव करते हुए स्वभाव में अधिक से अधिक लीनता करते करते ज्ञानी मोक्ष मार्ग पर अग्रसर हुए। क्योंकि एक बार ये सुख चखा उन्होंने, तो अभी जो इंद्रिय सुखों का जो दुख है उसमें वो क्यों जाएंगे, तो उनको बार बार इसी सुख की अभी अभिलाषा है, अपना स्वरूप समझ में आया है और उसको जानते हुए वो सुख अधिकाधिक वेदन होता है, तो उसी का अनुभव करते करते स्वभाव में जो अधिक अधिक लीनता होती जाएगी तब वो मोक्ष मार्ग पर अधिक अधिक आगे बढ़ते चले जाते और पूर्ण रूप से स्वभाव में लीन रहने पर उन्हें अनंत ज्ञान, अनंत सुख आदि की प्राप्ति हुई। जैसा स्वभाव है वैसा पर्याय में प्रकट हुआ, उसी को प्राप्त की प्राप्ति हुई कहने में आता है। स्वामी जी का ये वाक्य बहुत मशहूर है, प्राप्त नहीं प्राप्ति खाई। स्वभाव जो है वही तो पर्याय में प्रकट होगा, तो उस स्वभाव को पहले हाथ तो पाड़ना पड़ेगा। अरे ऐसा स्वरूप है, जब ज्ञानी कहते हैं कि स्वरूप स्वभाव ऐसा है उसकी दृष्टि करने से पर्याय में वो प्रकट होता है, तो पहले तो उसको ज्ञानी की बात है तो हाँ ये सच है, ये भगवान की बात है, अनंत देव ने बताई है, तो मुझे भी इसी मार्ग से अपना कल्याण करना है। ये पहले वो अंदर से उसको प्रतिदेय से होने लगे,
जो उपदेश है जो
फिर सामने वाले जीव के वो जो उपदेश है जो वो कथन आता है स्वरूप का उसमें भरोसा हो जाता है। विश्वास विश्वास की बात पहली है,
तो
ये जो ज्ञानियों की बात है, ये जो स्वभाव की बात करते हैं, तो ये स्वभाव उसकी दृष्टि करने से पर्याय में प्रकट होता है। भगवान की भक्ति करने से स्वभाव अपना पर्याय में प्रकट नहीं होता, यात्रा करने से, दान देने से, उपवास करने से स्वभाव जो है वो पर्याय में प्रकट नहीं होता, क्योंकि वो ये सारा क्या है, शुभ भाव क्या है, स्वभाव के विभाव है। विभाव करते रहेंगे और स्वभाव पर्याय में प्रकट होगा, ऐसे तीन काल में नहीं बने। तो स्वभाव ये विभाव आते हैं, जो जीव स्वभाव में दृष्टि करता है उसको भी उसके साथ साथ, क्योंकि अभी पूर्ण तो हुआ नहीं है, स्वभाव पर पूर्ण रूप से अंतर में लीन नहीं है, तो उसके भी ये सारे दया दान व्रत भक्ति के परिणाम आते हैं, वो विभाव है, पर उनके कारण स्वभाव नहीं प्रकट हुआ है। स्वभाव का लक्ष्य करने से पर्याय में स्वभाव पर्याय प्रकट हुई है,
परंतु उसको
अभी साथ साथ विभाव भी है, परंतु उसको उसकी रुचि नहीं है, उसका लक्षण
ये प्राप्ति की प्राप्ति है कि स्वभाव जैसा है वैसा
देश ये प्राप्ति की प्राप्ति है कि स्वभाव जैसा है वैसा स्वभाव की दृष्टि करने से पर्याय में आता है, अपने आप नहीं आएगा
उसकी प्राप्ति हुई।
तो जो प्राप्त है उसकी प्राप्ति हुई, यानी जो स्वभाव है अभी वर्तमान में है, ऐसा नहीं कि वो दृष्टि करने पर स्वभाव उत्पन्न होगा, ऐसे नहीं, स्वभाव त्रिकाल रहता है, एक रूप रहता है, हमेशा रहता है, हर पर्याय में विद्यमान है।
तो ये प्राप्ति
उसका लक्ष्य नहीं कर रही पर्याय
बेटियों,
तो ये प्राप्ति की प्राप्ति हुई
समझानी
बेटियों, ये सारी बातें अपने आप को समझानी है, दूसरों को समझाने में हम सब बहुत होशियार होते हैं। मराठी में कहावत है कि दूसरों को बताएं ब्रह्म ज्ञान और स्वयं शुष्क पाषाण, मराठी में कहते हैं दूसरे सांगे ब्रह्म ज्ञान स्वतः कोरड़ा पाषाण, यानी ये दूसरों को बताने के लिए नहीं, अपने आप को ही समझाना, वैसी हमारी दशा न हो इसलिए यह सावधानी रखना बहुत जरूरी है। जीव के भाव और कर्म की उदयादि अन्य अवस्थाएं एक ही समय में होती है, इसलिए जीव के भावों को देखकर कर्म की अवस्थाओं का ज्ञान हो सकता है। अभी हमने देखा था ना कि एक ही समय में तो नहीं होते, जीव के भाव की तरफ देखो तो हम कर्म को बात बता सकते हैं, कर्म की तरफ देखो तो जीव के कौन से भाव चल रहे हैं उसको भी हम बता सकते हैं, वो एक दूसरे को बताने वाले हैं।
उसी तरह कर्मों की कौन सी अवस्थाएं है देखकर,
उसी तरह कर्मों की कौन सी अवस्थाएं है देखकर जीव के भाव का ज्ञान हो सकता है। बेहोशी नींद विग्रह गति एकेंद्रियादि पर्याय में राग द्वेष होते हैं या नहीं, ऐसा प्रश्न तुम्हें उठ सकता है। तब ऐसा विचार करो कि आठों ही कर्मों का उदय तो निरंतर चलता ही रहता है, एक समय मात्र भी उनका उदय रुकता नहीं है। एक दर उपरोक्त जीवों में भी रागादि औदयिक भाव होते ही रहते हैं, यह बात ख्याल में आती है। दूसरा भी हमने ऐसा भी समझा कि चारित्र गुण है तो वहाँ भी उसकी पर्याय तो चल ही रही है, तो वहाँ उसकी विभावी पर्याय होगी, एक इंद्रिया जीवों में वहाँ तो कोई समय दर्शन है ही नहीं है, तो इसलिए वहाँ भी रागादि विद्यमान है। अब उनमें कर्मों का उदय है कि नहीं है, कर्मों का उदय भी आ जाता तो कर्म रही जीव हो जाता है, तो ऐसा भी नहीं, वहाँ भी आठों कर्म का उदय चल रहा है, तो उस पर से भी हम जीव के भावों का अनुमान लगा सकते हैं।
हमें लगता है कि कोई जीव जब
हमें लगता है यानी कोई जीव जब शुद्धोपयोग में होगा यानी आत्म ध्यान में लीन होगा तब उसके राग द्वेष नहीं होते होंगे, पूर्णता रूप रहे होंगे, ऐसा लगता है ना, अरे वो तो शुद्धोपयोग में उसको राग द्वेष है नहीं, बिल्कुल प्राथमिक जो केजी वाला है उसको बताते हाँ ये स्वभाव में लीन हो गया, राग द्वेष का अभाव हो गया। परंतु ऐसा नहीं है, क्योंकि जब तक मोहनीय कर्म का उदय विद्यमान है तब तक शुद्धोपयोग में भी ये कौन सा मोहनीय लेना यहाँ
शुद्धोपयोग,
क्योंकि शुद्धोपयोग की बात की है ना, तो शुद्धोपयोग में भी उस जीव का अबुद्धिपूर्वक रागादि रूप परिणमन चलता ही है। ये बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक आई इसी बात, अबुद्धिपूर्वक यानी क्या, जानने में नहीं आता, ज्ञान का उपयोग उसको पकड़ नहीं रहा, रागादि उपयोग से उपयोग हट कर अपने स्वभाव को जान रहा है, तब वो जो सारे रागादि है वहाँ विद्यमान है, तो उनको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक राग, और बुद्धिपूर्वक यानी जो ज्ञान में आते वो बुद्धिपूर्वक, यदि ऐसा न मानेंगे तो सम्य दर्शन होते ही जीव पूर्ण विचारी बन जाता है। हाँ, प्राथमिक अभ्यास करने वालों के लिए इस प्रकार का स्थूल कथन द्रव्यान योगादि में कभी कभी किया जाता है, परंतु उसका कर्णान योग के साथ कहीं भी विरोध नहीं है। वहाँ ऐसा कहा ये ऐसा ऐसा कहते हो वहाँ तो राग है ना, ये बात नहीं, ये समझाने की अलग अलग शैली होती है और उस शैली के अनुसार उसका अर्थ भी वैसा, किसको समझा रहे हैं, क्या समझा रहे हैं, ये सारा बात बराबर अपने ख्याल में ले लें, ये बात
आनंद ही
करना योग द्वारा उसकी सूक्ष्मता जानने पर तो आनंद ही होता है, मोक्ष मार्ग का स्वरूप अधिक स्पष्ट होता है। यहाँ एक महत्व की बात याद रखनी पड़ेगी कि मात्र मोहनीय कर्म का उदय ही जीव के मोहराग द्वेष परिणामों को सिद्ध कर सकता है। देखो हमने देखा था ना कि कर्मों का उदय है ना, उसकी तरफ देखकर हम यहाँ जीव के परिणाम बताते हैं। तो कोई कहेगा हाँ यहाँ ग्यारहवर्ण कर्म का शोषण चल रहा है तो वहाँ जीव के मोहराग द्वेष है कि नहीं? बोलो होंगे। आप क्या कहती हो? ज्ञानावरण का प्रक्षोक्षम है, विक्षोक्षम ज्ञानावरण, वो ज्ञानावरण कर्म को हमने देखा तो वहाँ जीव को मोहराग द्वेष होंगे कि नहीं होंगे? बारहवें गुण स्थान में तो ये इसलिए क्या कहते हैं, यहाँ क्या लिखा देखो, मैंने अभी आयु देखी, हमने आयु कर्म देखा, आयु कर्म की तरफ देखा, हाँ आयु का उदय चल रहा है तो मोहनीय कर्म होगा कि नहीं होगा? होगा भी नहीं भी होगा। ये जरूर नहीं कह सकते। इसलिए क्या कहा यहाँ, मात्र मोहनीय कर्म का उदय ही, अन्य कर्मों का उदय है इसलिए वहाँ मोहराग द्वेष है ऐसा कभी कह ही नहीं सकते। तो इसलिए कहा कि मात्र मोहनीय कर्म का उदय ही जीव के मोहराग द्वेष परिणामों को सिद्ध कर सकता है, परंतु साता या असाता वेदनीय कर्म का उदय है इसलिए जीव को मोहराग द्वेष परिणाम होंगे ही, यह बात सत्य नहीं है और वैसा मानना गलत होगा। अभी किसी को एक्सीडेंट हुआ है तो एक्सीडेंट हुआ है तो उस एक्सीडेंट के लिए साता असाता का उदय चल रहा है तो उसकी तरफ देखकर जीव को मिथ्या तो हो रहा है कि तीव्र राग द्वेष हो रहा है, ऐसे हम नहीं कह सकते। वो जीव समझो होगा तो वो पांचवें गुण स्थान वाला होगा तो उस समय तो वो अपने स्वरूप की भावना करके तो अन्य भाव में चला जाएगा। तो सारा आगे उदय की तरफ देखकर हम उसके मिथ्या तो परिणाम या अन्य मोहनीय के परिणामों का अंत नहीं रखते, इसलिए वो तीव्र भाव परिग्रह ऐसा भी नहीं कह सकते, यानी वो तीव्र ममत्व भाव ऐसा नहीं है। तो इससे पता चलेगा अगर कर्म की अपेक्षा से देखना है तो कर्मों में कितना उदय चल रहा है परिणामों को बताएगा, अन्य कर्मों के उदय की तरफ देखकर हम उनका उठ रहे हैं। पहले अंदर कितने पड़े उसकी बात नहीं है, अभी जो उदय रूप जो उदय के समय में जो है दोनों का ऐसा आपस में संबंध है, जीव के भाव इतने ना, हाँ तो कर्म का उदय अभी नहीं, जीव नहीं लगाते मोहराग भावों का अंदाजा नहीं लगाते। अभी किसी ईश्वर वस्तु तीव्र आशा तक है कर्म चल रहा है तो उनको मोहराग द्वेष हो रहे तीव्र, क्यों? तो कोई ध्यानारूढ़ है सातवें गुण स्थान उसका अंदाजा कहाँ लगा? शरीर की वैसे शेप तकलीफ नहीं उनको, तकलीफ अगर तकलीफ दुखरूप अनुभव करता है तो मोहनी के जीव उसमें जुड़ जाता है और दुखरूप परिणाम अपना कर लेता है। कितना दूर है
शरीर मैं हूँ मानता है,
मोह जो है शरीर मैं हूँ मानता है उसको दुख का कारण अभी लगभग अभी जीव को पूर्ण अपने स्वभाव का वहाँ पर किया शरीर की अवस्था बन रही है, वैसे तो ऐसी अवस्था में तो भेद ज्ञान को बल मिलता है। ये मेरे आदि को थोड़े ही है, ये मेरे आदि थोड़े ही है, ऐसा कर कर उसमें भेद ज्ञान को और बल मिलता है कि चलो ये तो अच्छा अवसर है अपने आप को कैसे जो देखता है ना तो अपने व्यापार के अनुकूल उसमें सोचता है कुछ भी घटना कहीं भी घटती है और वो अपने के लिए कैसे फायदेमंद होगा तो जो है सम्यक तो हो गया है, भेद ज्ञान कैसे करना उसको अभी कर की और वेद ज्ञान की पुष्टि करते हैं। मात्र की बात मात्र दया देखनी पड़ेगी, मात्र मुनि कर्म का उदय ही जीव के कर्म का उदय है, समझना गलत होगा। यानी उस समय जीव के मोह होंगे, किसी के ज्यादा होंगे, किसी के कम होंगे, उसके तो वो उनके असाताव्यजी कर्म का उदय कह सकते हैं, परंतु उस समय आत्मज्ञान में अबुद्धिपूर्वक आकार के विद्यमान हो गए, वो भी अबुद्धिपूर्वक में डाल दिया, क्योंकि ध्यान में है ना उदय निमित्त होगा। कर्म और जीव की स्वतंत्रता समझने में समझ में आने के बाद क्योंकि अभी तो ऐसे तो बुद्धि पड़ी रही थी ना, ये जीव ने कर्म का उपशम किया, उसका तो बुद्धि एक तो बुद्धि कर तो बुद्धि दूर हो जाती है, इसलिए पहले ये सारा स्वतंत्रता का पाठ संबंध एक समय में दोनों एक साथ होते हैं, इसलिए बताया। ये ध्यान में रख के ज्ञान होने पर कर्म बंधन में से छूटने का मार्ग भी अपने ख्याल में आएगा। ये बात जीव स्वयं ही समर्थ है इस बात का पता चलता है, उसके बारे में आगे चल।